कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवन, दामोदर देश भक्तवन, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, प्रार्थना और वंदना के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में हम चौथे स्कंद में भगवान के अवतारों के अंतर्गत पृथु महाराज का अवतार है। वैसे पृथु का मतलब प्रथम, पहला, और पृथु महाराज एक राजा को कैसे राज करना चाहिए उसका उदाहरण स्थापित करने के लिए ध्रुव वंश में, ध्रुव महाराज का वंश, स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा के दो पुत्र उतानपाद और प्रियव्रत, और तीन पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो प्रसूति का तो हमने दक्ष के प्रसंग में प्रसूति का वर्णन आया, देवहूति का वर्णन पहले किया। उतानपाद के वंश में ध्रुव महाराज, ये उतानपाद का वंश है। ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं आनी चाहिए इसमें। ध्रुव की प्रार्थनाएं अभी तक हमने की है, चौथे स्कंद में ध्रुव की प्रार्थनाएं 8, 9, 10। हाँ, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं होनी तो चाहिए, आई क्यों नहीं अभी तक?
4, 9 वाली करनी थी
जी,
आज। प्रभु जी यही है, ध्रुव ध्रुव महाराज वाली है प्रार्थना,
कौन सा अध्याय है?
9th chapter है।
वही मैं देखा नहीं, मैं तो इसको देखा ही नहीं है कि 4, 5, 9, 9 में कौन से, मैंने इसको नहीं पढ़ा है। मैं तो ये पृथु महाराज को देख रहा हूं, कल से मैंने उसको देखा था। तो कौन से श्लोक से है?
छठी से है प्रभु जी।
6 से।
जी,
ओके, 5 में क्या है देख लेते हैं। तो मैं तो इसको देखा नहीं है आज, जो भी हो। सो ध्रुव महाराज का वंश की बात चल रही है। सो ध्रुव महाराज अर्थार्थी भक्त का उदाहरण है, जो अपने पिता और पितामह से महान साम्राज्य के लिए भगवान के शरण में माता सुनीति की प्रेरणा से वन में जा रहे थे, मधुवन में, ब्रज में। एक तो पहली शिक्षा यह है कि अपमान संसार में भगवान मिला सकता है। ध्रुव का हुआ अपमान और ढूंढने निकला भगवान, विदुर का हुआ अपमान कौरवों की सभा में दुर्योधन के द्वारा, और गया तीर्थ यात्रा में मिला मैत्रेय से और भगवान श्री कृष्ण का संदेश प्राप्त हुआ। तो बहुत से ऐसे उदाहरण संसार में, इस शरीर का अपमान भगवान को मिलाने का एक बहुत अच्छा साधन है। यह है सकारात्मक, संसार में अपमान होने के ऊपर भगवान की ओर अपने मुख को मोड़ देना चाहिए, उसका उदाहरण ध्रुव महाराज है। क्षत्रिय का पुत्र था, अपमान माता सुरुचि का सह नहीं सका, मासी का, उसकी माता ने एक बहुत उत्तम शिक्षा दी। माता सुनीति ने कहा, बेटा अगर भगवान को पाने जा रहे हो, क्योंकि पहले तो आपके समस्या के लिए न्याय तो राजा के पास जाना चाहिए, जब राजा के सामने ये हुआ तो बाकी भगवान बचता है, केवल शेष भगवान है जिसके पास प्रार्थना करो। भगवान मिलेगा कहां, बोला वन में। चलो मैं वहां जाता हूं, 5 वर्ष का बच्चा है, अभी तो स्कूल कॉलेज नहीं गया। लेकिन मां ने एक बात बड़ी अच्छी कही सुनीति ने, बेटा भगवान को ढूंढने जा रहे हो और अगर आप सुरुचि के लिए हृदय में द्वेष लेकर जाओगे तो इस हृदय में भगवान का प्रकट्य नहीं होगा। ये मां की शिक्षा इतनी उत्तम है कि जिस हृदय में दूसरे के लिए द्वेष है, दूसरे के लिए बुराई है, ईर्ष्या है, जलन है, तो उस हृदय में भगवान कैसे आएंगे। और माता सुनीति से प्रार्थना करके निकले हैं ध्रुव महाराज। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नारद जी उनको मिले हैं। इस विषय को श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण में एक ये उदाहरण देते हैं और एक परीक्षित महाराज के सुखदेव महाराज के मिलने का उदाहरण देते हैं। ये दो उदाहरण चैतन्य चरितमृत के इस श्लोक का एक अद्भुत उदाहरण है कि ब्रह्मांड भ्रमित कोई भागीवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। गुरु को ढूंढने नहीं जा रहा था गुरु महाराज, भगवान को ढूंढने जा रहा था परीक्षित महाराज, भगवान को मिलने जा रहे थे, लेकिन भगवान ने उनके लिए गुरु का व्यवस्था कर दिया। नारद जी सामने खड़े हो गए। नारद जी ने परीक्षा भी ली और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। संसार को उनका तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे को राज दिला दो चलो, बोला नहीं अब भगवान चाहिए। तो 12 अक्षर का मंत्र नारद जी ने उनको दिया, ओम नमो भगवते, ऐसे वासुदेवाय कह के 12 अक्षर का मंत्र दिया। और ध्रुव महाराज ने, ध्रुव टीला है मधुबन में, कभी ब्रजमंडल की परिक्रमा में बहुत नजदीक है हाईवे से, ये जो बड़ा मंदिर सफेद गुरुदेव का बना हुआ है इसके पीछे 2 किलोमीटर हार्डली है, वहां ध्रुव टीला है जहां ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। तो ध्रुव महाराज की वहां तपस्या के उपरांत 6 महीने की ध्रुव महाराज की तपस्या का वर्णन है। और भगवान की मूर्ति बनाए, भगवान का विग्रह बनाया बालू से, उसका अर्चन पूजन किया और ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं। अब यहां क्या है, हम 5वें श्लोक को पढ़ के देखते हैं। अब मुझे इस अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज वापस घर आ रहे हैं, तो घर आ रहे हैं इसका अर्थ है भगवान का दर्शन हो गया। तो भगवान और ध्रुव महाराज की तपस्या से ऊपर के लोक तपत होने लगे। वहां लिखा है कि ध्रुव महाराज सांस लें तो सारे संसार का हवा चले, ध्रुव महाराज सांस बंद करें तो सारे संसार का वायु बंद हो जाए। इसको कहते हैं व्यष्टि को समष्टि से समा लिया। तब भगवान को सबने प्रार्थना की तो भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के ध्रुव महाराज के सामने दर्शन देने के लिए आए हैं। और भगवान दर्शन देने के लिए सामने खड़े हैं, ध्रुव महाराज आंखें बंद करके हृदय में उसी परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने कहा मैं इसको दर्शन देने आया हूं, इसके ऊपर अनुग्रह करने आया हूं, और ये आंखें बंद करके मेरे को अंदर देख रहा है। तो भगवान ने उसके हृदय में जो दर्शन हो रहा था उसको अलोप कर दिया, उसको गुम कर दिया। वो दर्शन देखने में नहीं आया तो ध्रुव महाराज ने छटपटा के आंखें खोली तो वही सामने देखा। बोला जो अंदर दिख रहा था वही बाहर है। इससे एक तो प्रमाण ये मिलता है कि हृदय में जो परमात्मा चतुर्भुज रूप में है वही बाहर सामने खड़े हैं गरुड़ के साथ आए हुए। तो उस समय सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णय तम भक्ति भावो अभ्यग्रणात असत्तवरम परिश्रुत सर्वसम दुर्वक्षति सवै तदेव। स वो ध्रुव महाराज निश्चित रूप से उस समय प्रतिपादितम, प्रतिपादित मतलब प्राप्त किया, क्या गिरम वाणी। इसका भाव यह है, इससे पहले यह होगा कि ध्रुव महाराज के मन में आया कि इतना मधुर सुंदर दिव्य भगवान का दर्शन हो रहा है, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो ध्रुव महाराज को एक तो न तो अक्षर पढ़ा लिखा था और न ही वाणी उस एक आह्लाद में अलौकिक आनंद में कुछ कह नहीं पा रहा था। तो भगवान ने अपना शंख, जो भगवान के चतुर्भुज में एक शंख था, उस शंख का कपोल के साथ गाल के ऊपर के मस्तक के ऊपर स्पर्श कराया। और उस स्पर्श करने से ही ध्रुव के हृदय में भगवान की प्रार्थना के लिए सुंदर भावों का उदय हुआ। तो यहां लिखा है गिरम दैवम दिव्य परिज्ञाता, समझ गया, प्रकृष्टेन रूपेण ज्ञाता, ज्ञाता का मतलब जानना, परी का मतलब पूर्ण रूप से जान गया, पर आत्मा परमात्मा को निर्णय, अब निर्णय कर लिया ध्रुव महाराज ने उस भगवान के लिए भक्ति भाव, भक्ति के भाव से अभ्यग्रणात, अभ्यग्रणात प्रार्थना करने लगे। असत्वरम, असत्वरम, सत्वरम असत्वरम, तो कोई असत्य का वर्ण नहीं कर रहे थे, असत्वरम, सत्य का ही वर्ण कर रहे थे, असत्य का वर्ण नहीं कर रहे थे। इसका मतलब जल्दी नहीं थी, भागा दौड़ी नहीं थी, परिश्रुता उरु सर्वसम, भगवान जिसकी महिमा महान है, ध्रुव क्षति, ध्रुव लोक जो कभी नाश नहीं होगा। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं उस समय का अर्थ है, मैं समझता हूं इससे पहले श्लोक में होना चाहिए, मैं देख लेता हूं एक चार नंबर श्लोक में, हाँ, भगवान ने उनके मस्तक को इस अपने शंख के साथ छुआ, भगवान ने देखा कि ये मेरी प्रार्थना करना चाहता है, ये चौथे श्लोक में है। वो भगवान के गुणों का वर्णन करना चाह रहा था तो भगवान ने उसके भाव को देखा तो उन्होंने उसको जैसे ही कप, ऐसे कहते मस्तक के ऊपर अपने संग को जैसे छुआया तो सारे ही वेदों का ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो गया। ये है चौथा श्लोक और अभी हमने पढ़ा है पांचवा श्लोक। तो अब उनको वो वाणी प्राप्त हो गई, और समझ गए कि जीव और भगवान में बड़ा अंतर है, ये चक्रवर्ती पाद का भाव है, और हृदय में भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। तो अब ध्रुव जिसको ऐसा लोक मिलेगा जो कभी नाश नहीं होगा, उन्होंने भगवान की महिमा सर्वत्र जो है उसका गुणगान किया। तो हमने श्री प्रभुपाद जी का भाव पढ़ा, पढ़ रहे थे, उसको पूरा कर ले। तो जैसे ही ध्रुव महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की, शंख का स्पर्श उनके इसको भाल के ऊपर किया, भाल जहां हम तिलक लगाते हैं, तो उनको सारे वेदों का सार उनके हृदय में अपने आप स्फुरित हो गया, और भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है ये भी उनको समझ में आ गया, और भक्ति के भाव से भगवान जिसकी महिमा सर्वत्र सदा गाई जाती है और विश्व विख्यात है भगवान, उसके लिए ध्रुव महाराज जिसको भविष्य में ऐसा लोक मिलने वाला है जो प्रलय के समय नाश नहीं होगा, निर्णायक प्रार्थनाएं भगवान की करने लगे। तो प्रतिपद्य का मतलब प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, वो बुद्धि प्राप्त हुई जिससे भगवान को प्रार्थना की जाए। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ध्रुव को यह पता लग गया, ये तो निश्चित हो गया उसको कि जीव से भगवान भिन्न है, वो समझ गए परमात्मा में और जीव में बड़ा अंतर है, और उनका लक्ष्य था भक्ति, भक्ति भावेन, और भगवान की प्रार्थना करने लगे। कैसे भगवान है जिसकी महिमा पहले ही विश्व विख्यात है, तीनों लोकों में गाई जाती है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में बहुत से विषय हैं जिनका ध्यान से समझना चाहिए, बहुत प्रमुख विषय है इसमें। पहला विषय प्रभुपाद जी है लिखते हैं कि है परम सत्य भगवान, उसका भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के साथ क्या संबंध है। जो ये जानता है वो वेदों के अध्ययन करने वाला छात्र बुद्धिमान माना जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ध्रुव महाराज कभी स्कूल में गए नहीं, परंतु उनको वेदों का सारा सार उनके हृदय में भगवान की कृपा से प्रकट हो गया। कैसे हो गया? भगवान प्रकट हुए, भगवान ने अपने शंख का स्पर्श किया उनके भाल के ऊपर, उनके फोरहेड के ऊपर, और सारा ही वेदों का ज्ञान होते उसके हृदय में प्रकट हो गया, वेदों का सार। जैसे भगवान साक्षात यहां, एक तो गुरु की कृपा है नारद जी की, एक मां का आशीर्वाद है, तो तीन कृपाएं हो गई, मां का आशीर्वाद, गुरु का कृपा और भगवान का अनुग्रह, ये तीनों ने मिलकर ध्रुव महाराज के हृदय में दिव्य ज्ञान का, और जो नाम जपा ओम नमो भगवते वाला जो 12 अक्षर का मंत्र पढ़ा, तो साक्षात भगवान ने उसके हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकट किया। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये है वेदों के साहित्य को समझने का वास्तविक रास्ता या साधन। केवल पुस्तकों को पढ़ के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर और डिग्री लेने से भगवत तत्व के ज्ञान का बोध नहीं हो सकता। अब प्रभुपाद जी एक श्लोक का भाव देते हैं, जिसको गुरु में और भगवान में पूर्ण विश्वास है उसके हृदय में वेदों का ज्ञान अपने आप स्फुरित होता है। ये कौन सा श्लोक है? यस्यासन भक्ति भक्ति ना, ये तो नहीं है अकिंचन, ये नहीं, वो दूसरा है श्लोक। कौन सा श्लोक है? गुरु और भगवान के ऊपर जिसको पूर्ण विश्वास है उसके हृदय में वेदों का सारा ज्ञान अपने आप स्फुरित हो जाता है। यस्य गुरु हरु यस्य हरि तस्य गुरु कथिता है, ऐसे कुछ श्लोक अब नहीं आ रहा है मेरे को जबान पे। तो यह ध्रुव महाराज इसका उदाहरण है। नारद मुनि गुरु के निर्देश में भक्ति के साधन को अपनाया और भगवत कृपा से दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। और दो चीजें इसमें आवश्यक हैं, गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं दो चीजें मुख्य है। पहले तो होना चाहिए दृढ़ निश्चयात्मिक बुद्धि, ग्रेट डिटर्मिनेशन, इसको निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि गुरु ने कहा है भगवान मिलेगा तो मिलेगा। और दूसरा तपस्या, उसको प्राप्त करने के लिए अपनी पूरा प्रयास करना चाहिए, उसके लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्ट सहने में पीछे नहीं हटना चाहिए। तपस्या का अर्थ ये है, और परिणाम यह है कि साक्षात भगवान का दर्शन ध्रुव महाराज को हो गया, तो अन्य सबको भी हो सकता है। तो गुरु का शरण और दृढ़ निश्चय और तपस्या।
ये श्लोक यस्य देवे पराभक्ति,
यस्य देवाय पराभक्ति, फिर क्या, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु कथिता है। तस्येत कथिता है, हे अर्थ, वेदों का अर्थ, देव और गुरु भगवान के ऊपर और गुरु, ये भी बहुत बड़ा श्लोक अद्भुत है। बहुत से लोग हैं गुरु के ऊपर विश्वास है लेकिन भगवान का पता ही नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको भगवान के ऊपर विश्वास है गुरु का पता ही नहीं है, इसलिए दोनों को लिखा है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों के, दोनों की कृपा से ये संभव है, एक की कृपा नहीं, दोनों की कृपा से ये संभव है। तो यही है, यस्य देव पराभक्ति तथा यथा गुरु तथा हरि, जो भी, बहुत अच्छा श्लोक है, याद करना चाहिए। सो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ध्रुव महाराज तो छोटे बालक थे, वो भगवान को बहुत सुंदर उत्तम प्रार्थनाएं करना चाहते थे, परंतु उनको पूर्ण ज्ञान नहीं था और बेचारे हिचकिटा रहे थे क्या करूं, लेकिन भगवान ने कृपा की और जैसे ही अपने शंख को उनके मस्तक भाल के ऊपर छुआया तो सारा ही वेदों का सार उनके हृदय में स्फुरित हो गया, और क्या चीज उसको मुख्य रूप से समझ में आई, मुख्य रूप से उनको यह समझ में आया कि जीव और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। जीव सदा ही भगवान का सेवक है और इस संबंध से सदा ही जीव को भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, और ये अच्छा है कि हमारा ये विषय भगवान की प्रार्थना जितने महान पुरुषों ने की है भागवत में उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जीव का हम धर्म जो है उसका पालन कर रहे हैं, और कृष्ण कृपा करें हम सबको इसको आगे बढ़ा के पूरा करें। और फिर लिखा है, और जो दूसरी मुख्य चीज जो इस सिद्धांत के ऊपर भक्ति टिकी हुई है कि हम सेवक हैं, भगवान पूजनीय है, और जो साधन है उसका नाम भक्ति है, तो भक्ति तब होगी जब दो होंगे, एक पूजा करने वाला, एक सेवक, एक स्वामी, तो यही तो भक्ति का भाव है। बोला भगवान की क्या प्रार्थना करेंगे, भगवान की तो महिमा जुगा जुग और लोक लोकांतर में पहले से ही प्रसिद्ध है, फिर भी हर भक्त अपनी यथामति के अनुसार, अनुभूति के अनुसार भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ध्रुव महाराज की इच्छा क्या थी, अपने पिता से भी महान राज्य चाहिए, पिता ने उनको गोद में नहीं बैठने दिया, मतलब सिंहासन देने से मना कर दिया, इसका अर्थ यह है। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए गया, तो ध्रुव महाराज अर्थार्थी भक्त है, राजपाट पर प्राप्त करने के लिए गया, लेकिन भगवान ने उनके लिए पहले ही दुर्लोक का निर्माण कर लिया। जब वो महाप्रलय होगी तब भी दुर्लोक का विनाश नहीं होगा, प्रभुपाद लिखते ध्रुव महाराज ने ताबड़तोस जल्दी में, हड़बड़ी में नहीं, गुरु महाराज गुरु के निर्देश से और बहुत ही धीरज के साथ, धैर्य के साथ साधन करके सफलता प्राप्त की, भगवान को साक्षात दर्शन किया। अब उसको भगवान ने और ज्यादा कृपा उनके ऊपर की है, अहितु की कृपा की है कि वो अद्भुत बड़ी जिसको कहा जाए कि उत्तम प्रार्थनाएं भगवान की करने जा रहा है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रार्थना भगवान की करने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, ऐसे कोई अपना पेन उठाए और पन्ना उठाए, कलम उठाए और प्रार्थना लिखे, ऐसा संभव नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं, हरि गुरु वैष्णव की कृपा नहीं, तो एक अक्षर भी भगवान की प्रार्थना का लिखना संभव नहीं है। और अब 6 श्लोक में जा रहे हैं, जो ध्रुव महाराज की प्रार्थना का पहला श्लोक है, वो इसकी भूमिका है। ध्रुव उवाच यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्या अखिल शक्ति धरस्व धामना अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वग आदिन प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, हे परम पुरुष भगवान, आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। कहते हैं ध्रुव महाराज का शब्द है, प्रणाम कर रहे हैं, पहले प्रणाम कर रहे हैं। यो अंत प्रविश्य मम, यो अंत प्रविश्य, जो मेरे अंदर प्रवेश किया है, यो अंत प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्तम, प्रसुप्तम मतलब जो सोए हुआ, जो मेरा ज्ञान सोया हुआ था, अथवा क्योंकि जीव आत्मा तो सच्चित आनंद है, लेकिन वो अज्ञान से सोया हुआ था, उस प्रसुप्तम सोए हुए मेरे वचनों को जिनने कृपा करके जगाया, प्रसुप्तम संजीवति, उसको संजीव, उसको पुनः जीवन, जो जीवन दे दिया। अखिल शक्तिधर किसने दिया? अखिल शक्तिधर, सारी शक्तियों का सार है, विश्व का आधार है। स्वधामना कैसे किया? बोला अपनी धाम का अर्थ शक्ति भी, अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा। अन्याच हस्त चरण श्रवण, हाथ पांव कान त्वक चमड़ी, ये सारे प्राण और मेरी प्राण शक्ति, ये सारे, इन सारों को लेकर मैं भगवान आपकी प्रार्थना करता हूं। ध्रुव महाराज कहते हैं भगवान आप सर्वशक्तिमान है, अखिल अखिल विश्वधर है, आपने मुझ में प्रवेश किया, जो मेरे सारी इंद्रियां सोई हुई थी, अंतःकरण सोया हुआ था, इंद्रियां सोई हुई थी, जो वो सब पुनः जागृत हो गई। क्या सोया हुआ था? हाथ पांव कान त्वचा प्राण, और विशेष रूप से मेरी वाणी, वो जो सुसुप्ति में सोई हुई थी वो जाग गई। अब मैं आपको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। भगवान प्रवेश करते हैं, इसका मतलब भक्त के अंदर। ऐसे हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है 25 तारीख को, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के रूप गोस्वामी आदि के हृदय में प्रवेश करके उनके हृदय में दिव्य ज्ञान को दिया। लिखा है कि जैसे वृंदावन की सारी गुप्त भगवान की लीलाएं के, लीला के स्थलियां लुप्त हो गई काल के कारण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में अपनी शक्ति का संचार किया। जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि के समय संग शक्ति का संचार करते हैं, वो सृष्टि करता है, ऐसे ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान ने अपनी शक्ति का संचार किया, प्रवेश करके उसको प्रार्थना करने की जो है योग्यता और सुंदर शब्द कह सके, ये कृपा की। चक्रवर्ती बात लिखते हैं, मैं प्रणाम करता हूं भगवान को। कौन है भगवान? अखिल शक्तिधर है, जो मुझे मेरे अंदर प्रवेश कर गए और मेरी, और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, धाम से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से। इसी को कहते हैं कि हमारे भाव और प्रेम को प्रकट करने के लिए वो अभी सोई हुई है, उसको प्रकट करने के लिए भगवान की अंतरंग शक्ति संवित और आह्लादिनी प्रवेश करनी चाहिए, और वो भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से होती है। यहाँ साक्षात भगवान ने अपने नारद जी की कृपा से उसके हृदय में अपनी शक्ति का संचार किया और उनको सुंदर प्रार्थना करने का सामर्थ्य आ गया। उसके हाथ पांव त्वचा कान और प्राण सारे ही नवजीवक नवजीवित हो गए, पुनर्जीवित हो गए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज के हृदय में सारे वेदों का ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका था, तो अब कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि जो प्रार्थना करने जा रहा है वो वेदों के ही मार्गदर्शन में है और उसी के अंतर्गत है। ऐसे समझना चाहिए कि उसकी सारी इंद्रियां एकदम आध्यात्मिक रूप से जागृत हो गई। ये क्या है? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये है अतुलनीय अतुलनीय अहितों की कृपा। और आश्चर्य से प्रार्थना कर रहे हैं, आश्चर्य हो गया ध्रुव, ना ऐसे मैं कैसे कह सकता हूं, ये वेदन वचन मेरे मुख से कैसे निकले। आश्चर्य लगता है, प्रभुपाद जी जब पुस्तक अपने स्वयं पढ़ते थे, छप के आते थे, तो प्रभुपाद जी ने मैंने लिखा है ये सब, मैंने कैसे लिखा है, अपने ही पुस्तक स्वयं पढ़ने से आश्चर्यचकित हो जाते थे। क्यों? कि मैं तो केवल बोलने वाला था, लेकिन अंदर से प्रेरणा देके और डिक्टेट कराने वाला तो भगवान था। तो अपने ही लिखे हुए पुस्तक को आश्चर्यचकित होकर देखते थे। तो ध्रुव महाराज की प्रार्थना अपने उसको आश्चर्यचकित करने वाली है कि मेरे पास ज्ञान नहीं, कहां से आ गया। और ये भगवान की कृपा का, आप जो प्रचारक हैं, जब प्रचार करते हैं आपको अनुभूति हो जाएगी। कई बार आप कुछ बोल देते हैं, आपको पहले पता भी नहीं होता है, किसी प्रश्न का उत्तर ऐसे दे देते हैं और कई सालों के बाद फिर उसको शास्त्र में मिल जाता है जो पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ था। और कभी ऐसे शब्द भगवान वाणी के ऊपर अलंकृत करता है, ये हमने सुखदेव महाराज की प्रार्थना में पढ़ा था कि हमारी वाणी को भगवान अलंकृत करो। ये शरीर आपने बनाया, इसमें सो आप रहे हैं, ये आपके भोगने के लिए है। जब आपकी कथा कहने जा रहे हैं तो आप हमारे वचनों को आपके योग्य प्रार्थना करने का सामर्थ्य दीजिए। और ये अनुभूति कृष्ण कृपा से प्रचारकों को अपने ही लिखे हुए प्रभुपाद की तरह पुस्तक या अपने कहे हुए वचनों के ऊपर आश्चर्य होता है, और ऐसी अनुभूतियां भक्तों को होती रहती हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं, स्वधामना का मतलब चित्त शक्ति कहते हैं। चित्त शक्ति का मतलब ज्ञान की शक्ति भगवान की, जिससे भगवान को जाना जा सके। उसी ने ध्रुव महाराज के जीवन में नवीनता लाई और सोए का मतलब है अज्ञान को समाप्त कर दिया और वो जागृत हो गया। अब मैं दास के भाव से आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, आपके रूप गुण लीला की प्रार्थना करने जा रहा हूं। अभी तक तो ये मेरी वाणी सोई हुई थी, मुर्दा के बराबर थी, अज्ञान से अज्ञान में थी, परंतु अब अभी भगवान आपकी जो इच्छा है, इस वाणी मेरी को आप चाहे तो जागृत रखो, चाहे तो सुला दो। ये भोग के लिए नहीं है, संसार के लिए, ये आपकी सेवा के लिए है। केवल मेरी वाणी नहीं, मेरे हाथ पांव को भी आपने आपकी सेवा के योग्य बना दिया और मेरे प्राणों को भी आपने अपनी सेवा में स्वीकार किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इसका अर्थ कि ध्रुव महाराज की सारी इंद्रियां आध्यात्मिक शक्ति से संचारित हो गई। इसलिए कहते हैं सन्यासी का शरीर आध्यात्मिक हो जाता है, उसकी इंद्रियां मां वाणी शरीर मन सब भगवान की सेवा में लगता है, इसलिए उसका अग्नि संस्कार नहीं होता है, उनको समाधि देते हैं क्योंकि उनके शरीर आध्यात्मिक है अभी। तो ध्रुव महाराज का सारा शरीर ऐसे सारी इंद्रियां आध्यात्मिक हो गई। और ये समझना चाहिए मम और इमाम दो शब्द जो है, जो स्वयं कहते मम इमाम, कि ये मेरी इंद्रियां पहले किसी काम की नहीं थी लेकिन आपकी सेवा में लग रही है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ध्रुव महाराज अब तो बहुत सरलता से समझ रहे हैं कि पहली मेरी स्थिति क्या थी और अब क्या हो गई। सो काया पलट गई, दिन रात का अंतर है, मैं अज्ञानी बच्चा था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा आध्यात्मिक अनुभूति हो गई, भगवान का दर्शन साक्षात हो गया। अब तो जो मेरा सारे शरीर की इंद्रियां प्राण वाणी सोए हुए थे वो जाग गए। प्रभुपाद जब तक कोई आध्यात्मिक स्तर तक नहीं आता है, भगवान की दिव्य सेवा के लिए अपने आप को तैयार नहीं करता है, तब तक उसकी इंद्रियां आध्यात्मिक शक्ति से संचारित नहीं हो पाती हैं। तब तक वो मुर्दे की तरह है या भूत की तरह उसका शरीर काम करता है केवल इंद्रियों के भोग के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने भजन लिखा है, उसमें वो लिखते हैं अपने लिए लिखते हैं जीव जागो वो ही भजन गाया, कब तक माया की गोद में सोए रहोगे, जीव जागो गौरचंद्र बोले पिशाची माया खोल सोए, कब तक सोएगे इस माया के गोद में, जागो जागो। और वेद का भी यही वाक्य है, उठो उठो उत्तिष्ट उत्तिष्ट उठो उठो जागो जागो। और फिर लिखा है वेद भी ये कहता है उठो उठो अपने आप को पहचानो, ये मानव जन्म का दुर्लभ अवसर मिला है, अपने आप को पहचान लो, ये वेदों का वाक्य है। और ध्रुव महाराज ने इसकी अनुभूति की, स्वयं ध्रुव महाराज ने इस बात की अनुभूति की, उसकी सारी इंद्रियां आध्यात्मिक स्फूर्ति उनमें के अंदर आध्यात्मिक स्फूर्ति आ गई और वेदों के सार को समझ गया। ध्रुव महाराज निराकार भाव में नहीं था, निर्विशेष भाव में नहीं था, वो तो साक्षात भगवान का तो साकार सामने दर्शन कर ही रहा था। उसमें जागृति नहीं थी परंतु भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से अब उसके हृदय में सारे वेदों का सार अपने आप प्रकट हो गया है। जैसे कोई भौतिक व्यक्ति भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता है क्योंकि उसको वेद के सार का पता नहीं है कि भगवान है ही क्या, तो जब ध्रुव महाराज ने इस अंतर का पता लग गया कि पहली मेरी स्थिति क्या थी और अब क्या है, तो ये हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि हमारी स्थिति भक्तों के संग शास्त्र के श्रवण और गुरु के शरण के बाद हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया है। हम अपने भक्तों के संग शास्त्र के श्रवण और गुरु के शरण से पहले के जीवन को और भक्तों के संग शास्त्र के श्रवण और गुरु के शरण के बाद के जीवन को देखेंगे तो हमारे को अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आएगा, जैसे ध्रुव महाराज अपने जीवन में परिवर्तन देख रहा है। और ये परिवर्तन अगर आपके जीवन में है तो समझने के भगवान ने कृपा की। पहले ही भक्तों का संग और हरि कथा सुनने का मिल जाए और गुरु का सानिध्य और शरण मिल जाए तो यही भगवान की कृपा का प्रमाण है संसार में। भगवान ने कृपा की, कैसे पता लगे? कैसे पता लगे कि आपको भक्तों के संग में रुचि हो गई, कथा सुनने में, आपको श्रवण करने में सुख मिलना है और शास्त्र को समझने की इच्छा उत्पन्न हो गई है और गुरु के शरण लेने के लिए जिज्ञासु बन गए हो, तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई। और इसलिए उसने गुरु महाराज ने भगवान को प्रणाम किया बड़े आदर पूर्वक, बड़े ही सम्मान के साथ। भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है वो जान गए और उसकी आध्यात्मिक चेतना, सारी चेतना आध्यात्मिक हो गई, सारी इंद्रियां आध्यात्मिक, क्योंकि भगवान की सेवा आध्यात्मिक, अध्यात्म भगवान पूरा आध्यात्मिक है, उनकी सेवा हमारे जड़ इंद्रियों से कैसे होगी? अब अगर जो मंदिर में पुजारी हैं या पूजा करने का जिनको सिद्धि का पता है तो वो एक मंत्र होता है, पूजा करने जाने से पहले भूत सिद्धि का मंत्र होता है, अपने शरीर को भूल के आध्यात्मिक सारा अंग ये वो सब आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के शरीर, भगवान के विग्रह की पूजा करने के लिए हमको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, तभी हमारी पूजा भगवान की हो सकती है। तो उसके लिए भूत सिद्धि शब्द है कि अपने शरीर की सिद्धि करके आध्यात्मिक रूप से अंदर प्रवेश करना है। तो ऐसे आध्यात्मिक सारा द्रु का अस्तित्व आध्यात्मिक हो गया। और कैसे हो गया? भगवान की चित्त शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के, अंतरंग शक्ति के द्वारा। स्वधामना जो शब्द है उसका अर्थ है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, चित्त शक्ति, और ये भगवान की कृपा से हो सकता है। ये शब्द का अर्थ मतलब जो भाव भक्ति है, और शब्द था भक्ति भावेन, जो पांचवें श्लोक में था भक्ति भावेन, तो भक्ति का भाव तो प्रकट होता ही तब है, भक्ति का भाव हमारे सबके अंदर में सोया हुआ है, लेकिन वो प्रकट होता ही तब है जब भगवान की संवित शक्ति या अंतरंग शक्ति अंदर प्रवेश करती है, और यहां भगवान की कृपा से ये हुआ। और प्रभुपाद कहते हैं अब ये शक्ति कहां ही और जाके इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये हरे कृष्ण मंत्र जो हम जपते हैं इसमें जो हरे शब्द है यही तो भगवान की अंतरंग शक्ति है। और जब हमारा शरणागति पूर्ण होगी इसी नाम के प्रति, और तब ये नाम हमारे ऊपर कृपा करेगा। जब हमारा सेवा का भाव होगा, दास्य भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा, और ऐसे जो भगवत उन्मुख होता है उसको कहते हैं सेवानुमुखे। इसकी सारी इंद्रियां आप भगवान की सेवा में लगी है, और सेवा शुरू होती है जीवादो, सेवानुमुखे ही जीवादो, और वहां भी यही लिखा है भगवान के नाम रूप गुण अपने आप किसी को समझ में नहीं आते हैं, परंतु सेवा के भाव से जीवा से हरे कृष्ण जपना शुरू करेंगे तो आस्ते आस्ते हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक सत्व, इसको प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे लोहे को आग में रखने से लाल होने लगता है, आग का काम करता है, ऐसे हमारा ये जप करने से और हमारी सेवा में लगने से हमारा शरीर और सारी इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाती हैं, ये प्रभुपाद जी के कहने का भाव है। सेवानुमुख, और जब सेवा उन्मुख हम हो जाएंगे, भगवान की सेवा में उन्मुख हो जाएंगे, उस समय भगवान की अंतरंग शक्ति धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगी। और जब तक आध्यात्मिक भगवान की शक्ति का हृदय में प्रवेश नहीं होता तब तक भगवान की महिमा गाना या प्रार्थना करना संभव नहीं है। चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, संस्कृत जानता हो, बड़ा कवि हो, परंतु भौतिक स्तर का व्यक्ति भौतिक प्रकृति के ही प्रभाव में रहता है, इसलिए आध्यात्मिक भगवान का आध्यात्मिक शक्ति की कृपा के बगैर प्रार्थना नहीं कर सकता है। जब कोई भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा अनुभूतित होता है, कृपा प्राप्त करता है, तब उसकी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवन भक्तिर उत्तमा सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम तत्परेण परतवेन, पवित्र होनी है इंद्रियों को कैसे सेवा करने से, तब उनकी सारी इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाएंगी और ऐसी प्रबुद्धता ऐसी एनलाइटमेंट किसी को हो जाए तो फिर कोई भौतिक कार्य नहीं रह जाता है और ना ही भौतिक कार्य में लगने की इच्छा है, ना कोई भौतिक कार्य उसके मन में इच्छा ही नहीं होगी। और ऐसे इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की सेवा में लगाया जाए, इसको भक्ति कहा जाता है। पहले हमारे इंद्रियां, और ये बहुत अच्छी बात है, पहले गुरुदेव के निर्देश में हमारी इंद्रियां शास्त्र और गुरुदेव के निर्देश गुरु और शास्त्र के निर्देश में सेवा में लगती हैं और जब अनुभूति हो जाती है और जब इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं तो हमारी सेवा शुद्ध हो जाती है। अंतर यह है कि पहले हमारे इंद्रियां सेवा करती हैं मशीन की तरह, भाव नहीं होता है, परंतु जब आध्यात्मिक कृपा हो जाती है तो वो सेवा अपने आप में हमको सुख देने लगती है और सेवा फिर वो मशीनी अंदाज में नहीं होती है, मैकेनिकल नहीं होती है, फिर वो भाव युक्त होती है। और यहां ये पहले श्लोक का भाव पूरा होता है, दूसरे श्लोक को पढ़ लेते हैं। असल में कहा जाए कि मैंने तो ये देखे ही नहीं थे आज, सच्ची बात तो ये है, मैं वो नीचे वाला देखा था, पृथु महाराज वाला। हरे कृष्ण। एकस्त्वम एव भगवन इदम आत्मशक्त्या मायाख्याय ओरो गुणया मद आद्य अशेषम सृष्ट्वा अनुविश्या पुरुषस्तद असद गुणेशो नानेव दारुषो विभावस विभावस विभावसुवत विभासी। एकस्त्वम एव भगवन, आप ही हैं एकमात्र भगवान। इदम आत्मशक्ति है, आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से माया आख्य उरु, माया आख्य जिसको माया कही जाती है, उरु बड़ी शक्तिशाली है, गुणया जो तीनों गुणों की है, महत तत्व आदि अशेषम कुछ बचा नहीं है, सभी आपके अंदर आता है, ये सब आपका है। सृष्ट्वा आपने सृष्टि की, अनुविश्य पुरुषस तद असद गुणेशु, ओके महद आदि महत तत्व जिस शब्दों का अर्थ ठीक लग रहा है, अनुविश्य प्रवेश्य जब आप प्रवेश करते हैं इसमें पुरुष अवतार लेकर इस जगत में, तो ये जगत कैसा है, ये तो कठपुतली जैसा है, दारुशु का मतलब लकड़ी की मूर्ति, कठपुतली जैसा है, आप हिलाते हैं तब हिलता है। विभावसुवत, विभावसु कहते हैं अग्नि। तो इस श्लोक का भाव ये है ध्रुव महाराज का, भगवान आप ही परम पुरुष है, परंतु आप अपने अनेक शक्तियों के द्वारा आध्यात्मिक जगत में अलग शक्तियां आपकी हैं और भौतिक जगत में अलग शक्तियां। ये भौतिक जगत में पहले तो आप महत तत्व की सृष्टि करते हैं और फिर उसमें प्रवेश करते हैं, महत तत्व में प्रवेश करते हैं कर्ण दक्षाई विष्णु, वो उसकी आत्मा है, आप परम पुरुष हैं और तीनों गुणों के द्वारा और प्रकृति के द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। जैसे अग्नि आग में प्रवेश करती है, लकड़ी कोई छोटी है कोई मोटी है, कोई लंबी है कोई चौड़ी है, लकड़ी के आकार प्रकार से उसकी अग्नि में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये जो भगवान की शक्ति का उदाहरण दिया है दारू और विभावशों के साथ आप एक ही है भगवान, अद्वैत है, कोई दूसरा नहीं है, अद्वित आपका और कोई, आप एक है। आपने ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा जगत, भौतिक जगत की सृष्टि की है मात तत्व के द्वारा, अपनी माया के द्वारा, गुणमयी माया के द्वारा। फिर आप इसके अंदर प्रवेश किया आपने, जैसे अग्नि लकड़ी में प्रवेश करती है, अग्नि लकड़ी में प्रवेश करती है, कैसे करती है हम देखते नहीं है, लकड़ी छोटी मोटी जैसी हो उसको जलाएंगे तो अग्नि अंदर से निकलेगी, और अलग अलग अग्नि अलग अलग दिखती है, लकड़ी के अंदर अग्नि, सब लकड़ी में अग्नि है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हम जानते हैं कि आप अंतर्यामी के रूप में प्रवेश करते हैं भौतिक जगत में और उदासीन की तरह है, और उसको जीवन प्रदान करते हैं, नहीं तो भौतिक जगत में, भौतिक प्रकृति में जीवन कहां से आता है। आप अंतर्यामी जब प्रवेश करते हैं तभी इसमें जीवन आता है। ऐसे ही आपके भक्तों की इंद्रियां जो आपके ऊपर केंद्रित हैं वो आध्यात्मिक हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर आप ही प्रवेश करते हैं। उदाहरण देते हैं, आप भौतिक जगत में प्रवेश करके जड़ को चेतन की तरह चला देते हो, ऐसे हमारे जड़ शरीर में आपने, भक्तों के जड़ शरीर में भगवान प्रवेश करके उसको चेतन कर देते, परंतु सामान्य लोगों के चेतन, सामान्य लोगों के सारी इंद्रियां मायामय होती हैं और वो माया का ही सोचती हैं, उनके अंदर आप प्रवेश नहीं करते। स्वधामना जो पहले श्लोक में था, और माया आख्या इस श्लोक में जो है ये सार बता रही है, माया आख्या और स्वधामना। तो यहां से प्रभुपाद जी का तात्पर्य कल पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरी क्लास अब भक्ति शास्त्र की शुरू होने वाली है, तो अच्छा हुआ आपने याद कराया, कल इसको देख लेंगे। कल वैक्सीनेशन करानी है, उसके बाद कृष्ण कृपा करे कोई समस्या नहीं हुई शरीर में तो क्लास शाम को करेंगे, वृंदावन पहुंचने का विचार है। तो अब कथा को यहां विराम देते हैं, किसी का कोई जिज्ञासा। अनुविश्य प्रवेश्य, जब आप प्रवेश करते हैं इसमें पुरुष अवतार लेकर इस जगत में, तो ये जगत कैसा है, ये तो कठपुतली जैसा है, दारुशु का मतलब लकड़ी की मूर्ति, कठपुतली जैसा है, आप हिलाते हैं तब हिलता है। विभावसुवत, विभावसु कहते हैं अग्नि। तो इस श्लोक का भाव ये है ध्रुव महाराज का, भगवान आप ही परम पुरुष है, परंतु आप अपने अनेक शक्तियों के द्वारा आध्यात्मिक जगत में अलग शक्तियां आपकी हैं और भौतिक जगत में अलग शक्तियां। ये भौतिक जगत में पहले तो आप महत तत्व की सृष्टि करते हैं और फिर उसमें प्रवेश करते हैं, महत तत्व में प्रवेश करते हैं कर्ण दक्षाई विष्णु, वो उसकी आत्मा है। आप परम पुरुष हैं और तीनों गुणों के द्वारा और प्रकृति के द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं, जैसे अग्नि आग में प्रवेश करती है, लकड़ी कोई छोटी है कोई मोटी है, कोई लंबी है कोई चौड़ी है, लकड़ी के आकार प्रकार से उसकी अग्नि में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये जो भगवान की शक्ति का उदाहरण दिया है दारू और विभावशों के साथ, आप एक ही है भगवान, अद्वैत है, कोई दूसरा नहीं है, अद्वैत आपका और कोई, आप एक है। आपने ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा जगत, भौतिक जगत की सृष्टि की है मात तत्व के द्वारा, अपनी माया के द्वारा, गुणमयी माया के द्वारा। फिर आप इसके अंदर प्रवेश किया आपने, जैसे अग्नि लकड़ी में प्रवेश करती है, अग्नि लकड़ी में प्रवेश करती है, कैसे करती है हम देखते नहीं है, लकड़ी छोटी मोटी जैसी हो उसको जलाएंगे तो अग्नि अंदर से निकलेगी, और अलग अलग अग्नि अलग अलग दिखती है, लकड़ी के अंदर अग्नि, सब लकड़ी में अग्नि है। चक्रवर्ती बात देखते हैं, हम जानते हैं कि आप अंतर्यामी के रूप में प्रवेश करते हैं भौतिक जगत में और उदासीन की तरह हैं और उसको जीवन प्रदान करते हैं, नहीं तो भौतिक जगत में, भौतिक प्रकृति में जीवन कहां से आता है। आप अंतर्यामी जब प्रवेश करते हैं तभी इसमें जीवन आता है। ऐसे ही आपके भक्तों की इंद्रियां जो आपके ऊपर केंद्रित हैं वो आध्यात्मिक हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर आप ही प्रवेश करते हैं। उदाहरण देते हैं, आप भौतिक जगत में प्रवेश करके जड़ को चेतन की तरह चला देते हो, ऐसे हमारे जड़ शरीर में आपने, भक्तों के जड़ शरीर में भगवान प्रवेश करके उसको चेतन कर देते, परंतु सामान्य लोगों के चेतन, सामान्य लोगों के सारी इंद्रियां मायामय होती हैं और वो माया का ही सोचती हैं, उनके अंदर आप प्रवेश नहीं करते। स्वधामना जो पहले श्लोक में था और माया आख्या इस श्लोक में जो है ये सार बता रही है, माया आख्या और स्वधामना। तो यहां से प्रभुपाद जी का तात्पर्य कल पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरी क्लास अब भक्ति शास्त्री की शुरू होने वाली है, तो अच्छा हुआ आपने याद कराया, कल इसको देख लेंगे। कल वैक्सीनेशन करानी है, उसके बाद कृष्ण कृपा करे कोई समस्या नहीं हुई शरीर में तो क्लास शाम को करेंगे, वृंदावन पहुंचने का विचार है। तो अब कथा को यहां विराम देते हैं, किसी का कोई जिज्ञासा